نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 27 پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے اس پارے کے اندر 7 صورتیں اس کے اندر شامل ہیں پہلی صورت سورہ زاریات ہے اور سورہ زاریات کا موضوع بھی اسی طرح مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی خاص طور پر اس کا قیامت جو ہے وہ سزا و جزا اور اس کا ہونا اور قیامت کا وقوع ہونا یہ اس کی اس پہ بہت زور دیا گیا اس مضمون کے اوپر اور پھر اس کے وقوع کے بعد یقینی طور پر اس کے بدلے میں اس کے نتیجے میں پھر سزا و جزا قائم ہوگی اس پر پھر قرآن کے دلائل دیے گئے ہیں اور ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے یہ جو امکان آخرت ہے کہ یہ آخرت آ کر رہے گی لازمی طور پر اس سے پھر آفاق سے دلائل دیے گئے ہیں یعنی اس سے مراد زمین و آسمان کی بات کی گئی ہے ہواؤں کی اور بارش کی اور بارش کی بات کی گئی کہ جس طریقے سے وہ رحمت بھی ہوتی ہے اور جو ہے وہ عذاب کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے تو اس طریقے سے اس میں امکان ہے کہ آخرت کو جو ہے وہ ثابت کیا گیا ہے انفس میں سے بھی دلائل لائے گئے ہیں انسانی نفس میں سے بھی اور اس میں سے پھر انسانی ضمیر کو جو ہے وہ اس کی دلیل لائی گئی ہے کہ تم خود ہی جو ہے وہ ذرا اس پہ ہی غور کر لو کہ اگر تم سوچو تو خود تمہیں ضمیر یہ بتا دے گا کہ انسان جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر عمل کرتا ہے اس کو جو ہے وہ سزا اور جزا ہمیشہ یہاں پہ نہیں ملتی تو کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جب انسان کو سارے اچھے اعمال کا یا پھر اس نے جو برے کام کیے ہیں ان کا بدلہ بھی ملے پھر تاریخ سے بھی جو ہے دلائل دیے گئے ہیں اور تاریخی دلائل میں سے قصہ ابراہیم علیہ السلام لوط اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور اس کے ساتھ فرعون کی جو کشمکش ہے موسیٰ اور ہارون کے ساتھ ان کا عاد اور ثمود کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر اس ان پر جزا و سزا کو بھی گواہ ٹھہرایا گیا ہے عقلی دلیل بھی جو ہے دی گئی ہے تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ مختلف انداز سے بات کو جو ہر ممکنہ طریقے سے انسان جو جس انسان جس طریقے سے سمجھنا چاہے وہ اس کے لیے دلیل جو ہے موجود ہے عقلی دلیل یہ دی گئی ہے کہ دیکھیں دنیا میں ہر چیز کا جوڑا ہے انسان کا جو چیزیں چاہے بے جان بھی ہیں اور حتیٰ کہ آپ جو فزکس کے اندر بھی آپ دیکھیں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی جو ہے جو چارجز ہیں مثلا جو ہے پازیٹیو اور نیگیٹو اور اسی طرح دنیا میں ہر چیز کا جوڑا موجود ہے تو کیا عقلی لحاظ سے یہ دنیا کا جوڑا آخرت نہیں ہونا چاہیے اس پہ تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے تو یہ بھی جو ہے دلیل کے طور پر اس بات کو جو ہے سامنے لایا گیا ہے انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد بتایا گیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت یہ قائم کرے اور ظاہر ہے یہ اس بندگی سے مراد جو ہے وہ غلطی ہوگی اگر لوگ اس کو صرف رکوع اور سجود اور قیام اور نماز کے اوپر اس کو جو ہے معمول کریں اور اس طرح تاکہ اس معنی کو محدود رکھیں تو یہ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر جو بھی انسان دنیا کے اندر کام کرے گا چاہے وہ اپنا روزگار کے سلسلے میں ہے یا وہ پھر کوئی اور دوسرا کام ہے وہ سارے کے سارے پھر بندگی کی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ذیل میں آئیں گے اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت اپنے دل میں اس کو حاضر رکھنا اور یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے مجھ سے کس بات کو طلب کر رہا ہے کس بات سے منع کرتا ہے جو کام بھی انسان جو اس طریقے سے کرے گا تو پھر وہ بندگی کے اندر شمار ہوں گے اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنوں کی یا پھر انسانوں کی خاص طور پر یہاں پہ بات ہے تو انسان کی پہلی ترجیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی ہونی چاہیے اور اگر یہ ترتیب انسان کی بدل گئی ہے تو وہ اپنے مقصد حیات اور اس کی پیدائش کے مقصد کے خلاف وہ پھر جو ہے اپنی زندگی گزار رہا ہے یہ جو ہے جان لینا چاہیے یہ بات بتائی گئی ہے اس کے بعد پھر سورہ طور ہے یہ بھی مکی صورت ہے ارلی مکی صورت ہے 4 سے 5 نبی کے درمیان میں اتری ہے اس کا مرکزی مضمون اللہ کا عذاب اس کے متعلق بات کی گئی ہے کہ جھٹلانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو بھی لوگ تکذیب کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ پھر اللہ کا عذاب ایسا ہے ایسی چیز ہے جو آ کر رہے گا لازمی طور پر اور پھر ان کو دعوت دی گئی ہے کہ اس رسول پر اور جس دن کی یہ دعوت دے رہا ہے یعنی آخرت کا دن اس پہ ایمان لاؤ اور اس کے لیے توحید کے اگلی دلائل یعنی توحید کے اوپر بھی اگلی دلائل دیے گئے اور اپنے شرک کے اوپر यानी जो 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 लोग ये कर रहे हैं उनसे कहा गया कि तुम अपने शिर के ऊपर अपने जमीर से जवाब तलब करो कि इसका कोई जवाज बनता है कि तुम खाते पीते तो जो है किसी और हस्ती का हो, और सारे काम जो है वो दुआएं भी जो है जब जिंदगी किसी मुश्किल में फंस जाती है तो उसी से फिर दुआएं मांगते हो, और तुम जो है इबादत किसी और की करते हो, तो फिर ये इसे जो है वो इंसानी अकल से और उस इंसानी जमीर से जवाब तलब किया गया है। अल्लाह के अजाब के वाक़े होने पर 5 कस्में खाई गई हैं यहाँ पे, कोहे तूर की, इस पर दी जाने वाली तालीम की यानी पूरी शरीयत और तौरात की जो तालीम थी, बैत मामूर की, और ये बैत मामूर आसमानों में फरिश्तों का वो काबा किबला व काबा है जिसमें वो जिसके गिर्द वो तवाफ करते हैं, और आसमान की ऊंची छत यानी डीप आसमान, आसमान से मुराद जाहिर हम पहले भी बताते चले आ रहे हैं कि ये बिल्कुल मक्का के लोगों के लिए जो बिल्कुल ज्यादा पढ़े लिखे ना थे और वो दुनिया की चीजों से वाकिफ ना थे बाहर के लूम से, उनके लिए आसमान कायनात से मुराद आसमान ही था, तो उसकी ऊंची और डीप से तो मतलब उसके पूरी के जो जो यूनिवर्स है तो उसका डीप होना और उसका दूर होना, उसका बईद होना, उसके फासले का होना, तो ये इंसान इसको अच्छी तरह कम्प्रिहेंड कर सकता है। और मोजन समंदर की 5वीं चीज जिसकी कसम खाई गई है, जाहिर है मोजन समंदर बहुत बड़े समंदर और वो भी जो है पानी का बहुत बड़ा जखीरा ली हुई है, तो इन दलाइल पर और की दावा दी गई है। और फिर फरमाया कि ये जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं और जो अल्लाह ताला के इनकार करने वाले मुकज्जबीन, मुत्तकीन और मुकज्जबीन, इनका अंजाम एक जैसा ना होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की गई है कि शदीद मुखालफत के इस माहौल में भी आप कुरान की तज़कीर किए जाएं और कुरान के जरिए से दावत जो है वो दिए जाए, इसको किसी सूरत के अंदर इस काम को रोकना नहीं है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी भी दी गई है कि ये दावत आपकी अपने मंतकी अंजाम को पहुंच कर रहेगी, और न सिर्फ अरब बल्कि सारी दुनिया के अंदर ये दावत जो है वो फैल कर रहेगी। इसके बाद सूरह नजम है और ये 12 नबवी में मेराज के वाक्य पे जो है, इस पे मेराज के वाक्य का जिक्र है, तो जाहिर है ये उस वक्त उतरी। इसका अलबत्ता एक हिस्सा जो है बहुत पहले, दूसरा हिस्सा इसका जो है पहली 18 आयात तो जो है वो मेराज के मौके के बाद, और फिर दूसरा हिस्सा जो है वो जो उसका है वो बहुत पहले 5 नबी में तकरीबन 7 साल पहले उतर चुका था। इसमें बताया गया कि निजात का दारोमदार ईमान लाने के बाद नेक आमाल सर अंजाम देने से, यानी महज इंसान बस एक कलमा कह देने से निजात नहीं बल्कि उसके साथ ईमान अमले साले भी जरूरी है। और इनको बताया गया है कुफारे मक्का को कि नाम निहाद माबूदों की शफात पर भरोसा करने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई तालीमात पर ईमान लेके आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब रिसालत की वजाहत की गई है और इसके लिए फिर गिरते सितारों की कसम से आपकी सदाकत की गवाही जो है वो दी गई है। आपके मौजज़े मेराज का जिक्र है कि आपने फिर यहाँ पे मेराज के अंदर ही जब आप आसमानों में और तशरीफ ले गए तो आपने जिब्रील को अपनी असली शक्ल के अंदर देखा, और दूसरी अल्लाह ताला की अजीम निशानी को भी देखा। अल्लाह ताला ने फरमाया वला का दरा मिन आयातिन रब्बिल कुबरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की अजीम निशानियों को जो है वहां पे देखा, यानी अल्लाह ताला को नहीं देखा, अल्लाह ताला की अजीम निशानियों को देखा। फिर कुफारे मक्का की जो देवियां थीं फीन, लात, मनात और उज्जा, तो उनकी जो है वो नफी की गई है। जाहिर ये बुत परस्ती और शिर्क और कुफ का की नफी है, और इन बताया गया कि इन मुशरिकाना अकायद की बुनियाद वहम व गुमान है। और फिर ये भी बताया कि इंसान की कोशिशों की अहमियत का जो है वो उसका उसकी अहमियत बताई गई, उसका तस्करा किया गया है। और दो आयात के अंदर पूछे अमल इंसान मासा, क्या इंसान के लिए इसके अलावा भी क्यों है जो कुछ वो जो सही है जदोजहद करता है, और फिर दूसरी आयात में दूसरी जगह पे इसी सूरत के अंदर फरमाया वो अन्न लैसल इंसान लिल इंसान लिल इंसान इल्ला मासा, और यकीनी तौर पर इंसान के लिए वही कुछ है जो उसने जिसकी उसने कोशिश की है। और इसमें फिर सही सहीफ़े मूसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात का जो है खुलासा दिया गया है। सहीफ़े मूसा से मुराद फिर तौरात है यहाँ पे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे भी जो है وہ اس طرح صحیفے جو ہے دوسرے نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس میں ایک بات جو بات بتائی گئی ان کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ ان میں جو ہے یہ باتیں شامل ہیں کہ کوئی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا ہے, انسان کی کوشش دیکھی جائیں گی اور جزا و سزا پھر انہی کی بنیاد پہ دی جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ لوٹنا تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نر اور مادے کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ ان سے انسانوں کی پھر افزائش نسل ہو. اور جو ہے وہ چھٹی بات یہ بتائی کہ اس نے تمام پچھلی قوموں کو تکذیب جنہوں نے کی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. اور ساتھ ہی یہ بات بتائی کہ یہ طاقت وہ رکھتا ہے ہلاک کرنے کی, اور یہ اس کی جو ہے ڈسکریشن اور اس کا استحقاق ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ رب اور مالک اور خالق اور معبود ہونے کے حوالے سے. پھر سورہ اس کے بعد سورہ قمر ہے, یہ مکی سورت ہے, یہ بھی سات نبی میں ہوئی ہے. اور قمر اس کا نام جو ہے اس میں چونکہ شق القمر کے واقعے کا ذکر ہے, تو شق الچاند چاند کے ٹوٹنے کا, تو اس میں جو ہے اس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے قمر ہے, اور یہ بھی ایک سمبولک نام ہے. اس میں مشرقین اور کفار مکہ کی جو جو الائٹ فورسز تھی, مشترکہ اتحادی قوت تھی جو ساری کی ساری مکہ اور اس کے اتحادیوں کی, تو جو ہے اس کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی گئی ہے کہ یہ شکست اور عزیمت سے دوچار ہوگی, اور یہ بہت جلد جو ہے یہ پوری ہوئی. اور اس صورت کے اندر دو آیات کی ترجیح ریپیٹیشن ہے, جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کیا گیا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ ہم نے یقینی طور پر اس قرآن کو جو ہے وہ آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے, تو پھر ہے کوئی جو اس پہ غور کرے, اس کو سمجھے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آسان کر دینے کا؟ بہت سارے لوگوں سے تو جو ہے یہ بیان کرتے ہیں لوگ کہ بھائی قرآن بہت مشکل ہے, اور اس کا سمجھنا اور اس کا پڑھنا اور اس کی, تو یہ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ ارشاد فرما رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے, ایک دفعہ بھی نہیں کہا, بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو دراصل اس قرآن کا پڑھنا آسان ہے, اس کا سمجھنا بھی آسان ہے, جو اس کی طرف جانا چاہے سمجھنا چاہے, اس کا حفظ کرنا بھی آسان ہے. اب دیکھ رہ سکتے ہیں کہ جو ہے عام دنیا کے اندر تو انسان 20-25 پیجز بھی ہر بار یاد نہیں کرتا, کسی کتاب کی نہیں کر سکتا, لیکن اب دیکھیں کہ سینکڑوں صفحات اس کتاب کے ایک 5-6 سال کا بچہ بھی, اور بس معمول گئے کہ بچے 5-6 سال کی عمر میں وہ مشکل بولنا سیکھتے ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں اتنی بڑی زخیم کتاب لفظ بلفظ بالکل کسی غلطی کے بغیر زیر زبر کی جو ہے وہ بچے بھی اس کو جو ہے وہ, تو یہ اس کا ایک معجزہ ہے کہ اس کو یہ آسانی ہے اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے اس کے حفظ کرنے میں بھی, اور اسے نصیحت حاصل کرنا بھی آسان ہے, اور اس پر عمل حاصل کرنا بھی. لیکن عزیز بہنوں اور بھائیوں, یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے, اگر کوئی ان کی طرف آنا چاہے تو, لیکن اگر ایک شخص جو ہے اس طرف آنا ہی نہ چاہے, اس کی کوئی زندگی میں اس کا کوئی کوشش ہی نہیں ہے اس کی طرف قرآن کے آنے کی, تو پھر اس کو یہ بات کہنے میں جو ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ کتاب مشکل ہے یا آسان ہے. تو یہ تو جو شخص اس کی طرف آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دے. اور دوسری بات جس کی جو ہے وہ کی گئی ہے ریپیٹیشن, وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیف کان عذابی و نذر, تو کیسا ہے میرا عذاب. اور یہ جو ہے وہ تمام جتنی بھی قوموں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے ان کو ہلاکت کا, اور تمام پچھلی سورت کے اندر سورہ نجم کے اندر ان کی ہلاکت کا اجمالاً ذکر آئے, تو یہاں پہ 6 قوموں کی یا 5 قوموں کی جو ہے وہ تفصیلاً ذکر ہے ان کی ہلاکت کا. تو ہر ایک کو ہلاک کرنے کے بعد تو جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کیف کان عذابی و نذر, تو یہ جو ہے وہ بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس سورت میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اس زمین کے اندر ہر شے ایک نپی تلی مقدار کے اندر ڈٹرمنڈ ویل ڈٹرمنڈ جو ہے وہ چیزیں رکھ دی ہیں, اور جو ہے وہ ایسا نہیں ہے, اور جتنی انسان کی ضرورتیں تھیں ان کی ضرورتیں تا قیامت پورے کرنے کے لیے ہر چیز موجود ہے. ان کل شئ خلقنا ہو بقدر, ہم نے ہر چیز کو ایک جو ہے مقدار نون جاننے والی ماں ویلیو میں جو ہے یہ اماؤنٹ میں جو کوانٹیٹی میں پیدا کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لانا جو ہے وہ ہٹ دھرمی کی علامت ہے, اور اس میں حوالے سے شق القمر کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا, اور پھر یہاں پہ پھر انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے ہم پہ جادو کر دیا ہو, ہماری نظر بندی کر دی ہو, तो इस वजह से ये जो है हुआ है। तो फरमाया कि ये जो है रविश तबाही की रविश है और सबका कौमों के अंजाम से जरा इस पे जो है वो गौर कर लो। तो इस सूरत का मरकजी मजमून जो है वो ये है कि कुरैश की शिकस्त की पेशनगोई की गई है और उनका रवैया भी फरमाया कि पिछली कौमों की तरह है जो है वो ये जमीयत में होने के बावजूद तमाम लोग होने के साथ एक साथ होने के बावजूद ये सब शिकस्त खाएंगे और सबका कौमों की हिलाकत से इबरत हासिल करके जो है तकजीब से बचने की जो है वो तलकीन की गई है। इसके बाद फिर सूरह अल रहमान है और ये भी मक्की सूरत है, 4 से 5 नबवी में नाजिल हुई है और इसको एक मरफू हदीस में हजरत अली रजी अल्लाह ताला के हवाले से इसको उरूसुल कुरान कहा गया कि ये कुरान की खूबसूरत तरीन सूरत है और इसमें कोई शक भी नहीं है। और इसका जो नाम है अर्रहमान, इस नाम को भी इस सूरत के मजमून से एक बड़ी अहम जो है वो निस्बत है कि सारी सूरत अल्लाह ताला की सिफते जो रहमत है उसके मजाहिर का और उसके समरात का तज़किरा है सूरत के अंदर। और ये वो वाहिद सूरत है जिसमें इंसान के साथ एक और बाख्तियार मखलूक का जिक्र किया गया है, यानी जिन्नों का जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला ने दोनों को जो अख्तियार दिया है इसलिए अल्लाह ताला दोनों को जो है वो पूछेगा और उसे हिसाब किताब और हिसाब करेगा। और फिर इन दोनों के हिसाब बेहदो हिसाब अल्लाह ताला के ऊपर अल्लाह ताला के इन पर एहसानात हैं और फिर इनके मुकाबले में इनकी बेबसी और आजजी और फिर जो है उसका भी जिक्र किया गया है और उनको जो जवाबदेही का एहसास है उसके हवाले से उन्हें खबरदार किया गया है। सूरत के फिक्रे बड़े मुख्तसार हैं इसके और उनके अंदर एक खास सोती आहंग है, आप तो महसूस कर सकते हैं पढ़ने से और सुनने से और इबारत के हुसन के एतबार से और अदब और फसाद और बलागत के एतबार से। और ये खसूसी आहंग है जो इसकी सूरत का, इससे ये सब इस पूरे तमाम चीजों ने इसे कुरान की खूबसूरत तरीन सूरत जो है वो बनाया बना दिया है। अल्लाह ताला की नेमतों का तज़किरा बार बार है और तमाम सूरत अल्लाह ताला की नेमतों से के तज़किरे से भरी हुई है। फरमाया कि तुम किन किन चीज नेमतों के अल्लाह ताला की नेमतों को झुटलाओगे, तो ये जो है फिक्रा ये आयत 31 मरतबा दोहराया गया। फबी अज्जी आला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। और यहाँ पे ये बात भी नोट कर लेने के काबिल है कि ये जो लफ्ज है आला फबी अज्जी आला, तो ये जो आला लफ्ज है इसका तर्जमा खाली नेमत जो है वो मुनासिब नहीं है, बल्कि कहीं कहीं पे इसके नेमत जो है कुदरत और कहीं कमालात और कहीं पे अजायबियत कुदरत और कहीं पे मेहरबानियां और खूबियां और नेमतें और अल्लाह ताला के औसाफ हमीदा और कहीं फजाइल, और इस तरीके से मुख्तलिफ आयात के अंदर कॉन्टेक्स्ट के एतबार से ये मुख्तलिफ सारे तर्जमों में से कोई भी तर्जमा जो है वो किया जा सकता है। अल्लाह ताला की रहमानियत और कुदरत और रबूबियत के दलायल इस तरीके से पूरी सूरत के अंदर जा बजा जो है वो फैले हुए हैं। इन दलायल से फिर जजा और सजा को भी साबित किया गया है और जन्नत की बेशुमार नेमतों का तज़किरा किया गया है। और जो है अल्लाह के हुजूर पेशी से डरने वाले जो ग्रोह होगा, जो ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह ताला से डर कर और अल्लाह ताला का शऊर रखते हुए ये जिंदगी गुजारेंगे, उसकी कॉन्शियसनेसनेस में गुजारेंगे, तो अल्लाह ताला की इन नेमतों के वो लोग सारे हकदार होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शुमार फरमाए जिन्हें अल्लाह ताला ये बेशुमार नेमतें अता फरमाएगा, आमीन। उसके बाद फिर सूरह अल वाकिया है, ये भी मक्की सूरत है, 5 नबवी में जो है ये भी नाजिल हुई है। इसमें आखिरत में इंसानों का जो है वो तहवाल का तज़किरा है कि कयामत के रोज जो है इंसान जो है कितने ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे। तो ये बात जो है बताई गई है कि इंसान जो है उस रोज 3 ग्रोहों का जिक्र किया गया है। फिर इस कयामत के इम्कान पर आफाकी अनफोसी जो है वो कुरानी दलीलें भी दी गई हैं। और 3 ग्रोह जिनका जिक्र किया गया है उनमें असहाबुल मशमा है, ये बाएं हाथ के लोग हैं, और फिर असहाबुल मैमना है दाएं हाथ वाले, और फिर साबिकून अल अव्वलून है ये जो सब सबकत रखने वाले हैं। फरमाया कि इनमें से 2 गिरोह जन्नती हैं और 1 गिरोह जो है वो दोजखी है। सबसे पहले जिसके ग्रोह का जिक्र है वो साबिकून अल अव्वलून है, और ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने वाले हैं और ये अल्लाह ताला के मुकर्रब और नेक बंदे हैं जिन लोगों ने ईमान लाने में सबकत की है, सबसे पहले ईमान लेके आए और फिर उसके बाद जो है वो तमाम तकाजे थे जो ईमान के, इन्फाक और जो है जिहाद और बाकी जो है दावत और तबलीग और हर चीज के अंदर इन्होंने सबकत हासिल की है। इसीलिए ये अल्लाह ताला के खुसूसी इनाम के और खुसूसी कुर्बत के अल्लाह ताला की उसके मुस्तहिक ठहरे और उन पर बेशुमार नेमतें होंगी। और ये इन लोगों की तादाद यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा नहीं होगी, जाहिर है ये तादाद इनकी जो है वो कम होगी। ये अल्लाह ताला की बेशुमार इनामात इन पे और इन अल्लाह ताला की रहमतें और खास खुसूसी इकराम इनको जो है इनको हासिल होगा। उसके बाद असहाबुल जमीन है, ये भी जन्नत जन्नती लोग हैं। ये दोनों अगलों में भी और पिछलों में भी बहुत सारे होंगे जो अल्लाह ताला से जो है वो डरने वाले होंगे, अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक रखने वाले होंगे, ये भी जन्नत में नेमतों के अंदर होंगे। और असहाबे शुमार वो लोग हैं जिनके अंदर मुनकरीन और मुतरफीन, ये एलीट्स जो इनकार करने वाले और मुशरिकीन, ये सारे जो है वो सख्त अजाब के अंदर जो है होंगे। ये तीसरा गिरोह जो दोजख के अंदर होगा। आफाक और अनफुस से दलायल आए गए हैं, इम्कान आखरत के दलायल भी जो है वो यहाँ पे पेश किए गए हैं कि देख लो ये जो यानी आखरत के ऊपर के दोबारा उठाए जाने के ऊपर कि ये जो फसल का उगाना है या फिर जमीन के ऊपर से बीज में से एक फसल किस तरीके से देखते हो उगाती है, या पूरा दरख्त बन जाता है, या फिर एक नुतफे से एक इंसान का पूरा बना लेना, और फिर पानी का मुहैया करना देख रहे हो किस तरीके से आसमान से भी और जमीन से भी, और फिर देखते हो किस तरीके से अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आग जो है वो पैदा कर दी है जो है मुख्तलिफ। पहले तो इससे पहले जाहिर दरख्तों की कुछ टहनियों से इंसानों ने इसको बनाना जो है जलाना सीखा, और फिर इसके बाद पत्थरों को रगड़ के, और फिर चकमा आग से, और फिर इंसान मुख्तलिफ चीजों से जो है वो दरजाफ्त करता गया। तो अल्लाह ताला ने ये सारी खसूसियात इन चीजों के अंदर जो है वो रख दी है। तो इसका जो है बतौर दलील इसको साबित पेश किया गया है। कुरान का तफसीली तारुफ पेश किया गया है कि ये शैतानी अलका नहीं है, इसका इसके तमाम कॉन्टेंट्स के अंदर और इसके तमाम को किसी कुरान की तमाम आयात के अंदर किसी जगह पे शैतान इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, न इसकी वही के अंदर, ना इसके उतरने में, ना उसके बाद। और फरमा इसलिए फरमाया कि फिर कुरान से मुतल्लिक ये तुम्हारा मदहनत का और तकजीब का रवैया जो है इसको छोड़ दो, और फिर इसको इसके ऊपर ईमान ले आओ। इसके बाद मौत के वक्त इंसान की बेबसी का जिक्र भी किया गया है कि देखो अगर तुम अपने आप को और इन चीजों को जो है वो समझते हो जिन्हें तुम खुदा पुकारते हो, तो देख लो कि इंसान जब जो तुम किसी अपने अजीज को रिश्तेदार को देखते हो कि जब मौत उसके करीब होती है तो फिर वो जरा उसको वापस ले आओ, फिर किसी से कहे कि उसको वापस ले आओ और रोक लो उस मौत को। तो यकीनी तौर पर ये इंसान की बेबसी की बात की गई है, और एक बड़ी इरेफ्यूटेबल जो है वो एक एविडेंस अल्लाह ताला के की कुदरत के हवाले से और उसकी वहदानियत के हवाले से जो है वो पेश किया गया है। उसके बाद इस पारे की आखिरी सूरत अल हदीद है, और ये सूरत मदनी सूरत है, 5 हिजरी में जो है वो नाजिल हुई है, और यहां से 5 सूरतों का वो आगाज होता है जो तस्बीह के लफ्ज़ है, सब्बह लिल्लाह मा फिस समावात मा फिल अर्ज़, या जो सब्बह लिल्लाह मा फिस समावात वल अर्ज़, इन अल्फाज से जो शुरू होती हैं तस्बीह के लफ्ज़ से, तो उन सूरतों को इस लिहाज से मुसब्बिहात कहा जाता है। ये 5 सूरतें हैं, इसकी इस सिलसिले की पहली सूरत अल हदीद है। और ये लगातार नहीं है, लेकिन कुछ 2-3 लगातार भी हैं और बीच में कुछ एक आध छोड़ के फिर आती हैं। तो आगे जब सूरतें आएंगी तो उनका हम तारुफ करवाते जाएंगे। ये सूरत जो है बड़ी अहम सूरत है, और मुसब्बिहात के अंदर भी ये सबसे जो है अहम सूरत का तसव्वुर शुमार होती है। मुसलमानों पर आयद दीनी तकाजों के बयान के हवाले से ये कुरान की जामे तरीन सूरत है। इसको फिर जान लें कि मुसलमानों पर आयद दीनी तकाजों के हवाले से ये कुरान की जामे तरीन सूरत है। इसका खिताब तमाम मुस्लिम जमात को उस वक्त, तमाम अहले ईमान को ये नहीं है कि अपने अंदर हकीकी ईमान पैदा करो। इन ईमान तो रखते बहुत सारे लोग रखते, लेकिन फरमाया कि हकीकी ईमान जिसके नतीजे में अमल और अमल का जज्बा और शौक पैदा होता है, और वो पैदा करो, और फिर ईमान के तकाजे भी पूरे करो। और फिर बताया गया कि ये ईमान के तकाजे हैं क्या। इस सूरत के अंदर ईमान के 2 तकाजे बताए गए हैं बस, और वो है इन्फाक फी सबीलिल्लाह और जिहाद फी सबीलिल्लाह। और फरमाया कि इस अगर तुम इन दो तकाजों को पूरे नहीं करते हो तो तुम्हारे ईमान का कोई एतबार नहीं है। ये वाजे तौर पर बता दिया गया। उसके बाद जो कुछ बच जाता रहता है वो निफाक है, क्योंकि जबान से कहना ईमान और उसके तकाजे ना पूरे करना यही निफाक है। तो जो है इनफाक के बारे में आप हैरान होंगे कि 6 मरतबा 6 तरीकों से जो है अल्लाह ताला ने जो है अपील की है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ईमान के तकाजों को किस तरीके से शद्दोमद से बयान किया गया है सूरत के अंदर। पहले कहा गया है कि जो जो माल अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है, तुम्हें तुम्हारे पास है, ये तुम्हारी अपनी मिल्कियत नहीं है, ये तो तुम्हें अल्लाह ताला ने इस पे तुम्हें खलीफा बनाया है। वनफिकु मिम्मा जालक मुस्तखलफी नफी, ये तो तुम्हारा तुम इसके ऊपर खलीफा हो, लिहाजा माल खर्च करो। फिर उसके बाद जो है फरमाया, सवाल जो है पूछने की सूरत के अंदर जमीर को झंझोड़ने के लिए कहा कि तुम इन्फाक क्यों नहीं करते हो, मा लकुम अल्ला तुन्फिकु, तुम क्यों नहीं खर्च करते हो। और उसके बाद ये भी बताया गया कि अगर तुम मौत से पहले इन्फाक नहीं करोगे तो बहरहाल ये किसी और की मीरास से होता हुआ ये बिल आखिर अल्लाह ताला की मीरास जो है वो ठहरेगा। और मैं कि सारी जमीन व आसमान की हर चीज जो अल्लाह ताला ही की मीरास है, वलिल्लाह मीरास समावत वल, तो ये मरने से पहले ही जो है ये इन्फाक का जो है वो कर लो। और ये बताया गया कि इस्लाम की फतह के बाद इन्फाक और फिर किताल भी जो है वो करना जो है वो ज्यादा अफजल है जो है वो उसके किताल के बाद, इन इन्फाक किताल से पहले जंग से पहले इन्फाक करना उसकी ज्यादा फजीलत है जंग के बाद ये जिहाद के बाद फजीलत करने की, अगरचे दोनों को दोनों के अंदर जो अल्लाह ताला ने दर्जा रखा है। और फिर फरमाया कि लोगों खर्च करो, और खर्च का कैसे किया गया है कि लोगों कर्ज हसन की सूरत के अंदर अल्लाह ताला तुमसे कर्ज हसना का मुतालबा करता है, तो ये कर्ज हसना का मुतालबा भी दरअसल इन्फाक फी सबीलिल्लाह की सूरत है। और फिर ये भी बताया कि ये कर्ज हसन जो भी जो है तुम कर्ज हसन की सूरत में अल्लाह ताला को दोगे या तुम ये इन्फाक करोगे तो अल्लाह ताला उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर उसे तुम्हें जो है वापस करेगा। तो ये बात जो यहाँ पे बताई गई है। फिर उसके बाद इसमें जो है निजाम अदलो किस्त के क्याम का मजमून जो है बड़ा शद्दोमद से बयान किया गया है। और उसके बाद इसको जो है और इंसानी जिंदगी से 5 अदवार इंसानी जिंदगी के या 6 भी इसे कह सकते हैं गिनवाए गए हैं। पहला ये है लाइब जो है वो बिल्कुल अर्ली जिंदगी, अभी जो है बचपना किससे पहले की जिंदगी, जिसके अंदर कोई जो है वो लज्जत जो है जो चीज इंसान महसूस कर सकता है वो नहीं होती, वो खेल। और वो उसके बाद लहव है, ये जो नौजवानी की उम्र के जो जो चीजें खेले हैं और जो जो एक्टिविटीज हैं। और फिर उसके बाद जीनत है, और इंसान की टीप टॉप और मेकअप और इंसान को आराइश और ये सारी चीजें। और उसके ऊपर तफाखुर है कि ये जो चीजें मेरे पास इतनी है और मेरे पास इतनी है, और जो है ये इसके ऊपर फख्र करना जो आपकी पोजेशन है। और फिर तकासुर फिल अम्वाल, यानी अम्वाल के अंदर एक दूसरे से या दूसरे लोगों से बढ़ जाने की ख्वाहिश और या उसका इजहार। और फिर तकासुर फिल औलाद, औलाद के अंदर दूसरों से बढ़ जाने की जो है ये ख्वाहिश और उसका इजहार, ये जो 5 चीजें बताई गई। और फिर बिल आखिर इंसान जो है बिल्कुल फिर मौत के जो तरफ चला जाता है। तो एक लाइफ साइकिल इंसान का जो है बताया गया है। फिर के इस पे जाहिर है कि बिल आखिर तुम्हें लोगों अल्लाह की तरफ जो है वापस पलटना है। लोगों से मगफरत में सबकत और जन्नत में सबकत की तरगीब दी गई है कि साबिकू इला मगफरत में रब्बिकुम व जन्नतिन, यानी जो है मगफरत की तरफ और जन्नत अल्लाह ताला की तरफ की रग़बत जो है वो सबकत हासिल करो। ये सारी चीजें माल और औलाद और ये चीजें इंसान को मिलती हैं, लेकिन ये दायमी नहीं है, ये बिल्कुल आर्जी है। और असल चीज जो है वो अल्लाह ताला की जन्नत है और मगफरत है, और उसकी तरफ जो है वो उसका सामान भी करो। 25 नंबर आयत इसकी जो है बहुत ही अहम आयत है, और ये कुरान की अजीम तरीन आयात में से शुमार होती है। ये 25 नंबर आयत है, लकद अरसलना रुसुलना बिल बजीनात व अनजलना माहुमुल किताब वल मीजाना लियकूमन नासु बिल किस्त व अनजलना हदीद फीह बासुन शदीद व मुनाफिउ लिन नास व लियअलिमा अल्लाहु मन यनसुरुहु व रसुलुहु बिल गैब। ये जो है वो आयत है, और इसमें असल में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने रसूल और किताबें और शरीयत और मीजान ये क्यों भेजे। ये इसलिए भेजे हैं सारी चीजें कि उसकी जमीन पर عدل و قسط پہ مبنی ایک نظام قائم کیا جائے. اور اس وجہ سے یہ قرآن کی عظیم ترین آیات میں شمار ہوتی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو چیزیں بھیجی ہیں آسمان سے اپنے پاس سے, رسول اور کتابیں اور میزان اور یہ چیزیں جو بھیجی ہیں, تو وہ ساری کی ساری ان کا مقصد یہ ہے کہ عدل و قسط کا نظام اس سرزمین کے اوپر جو ہے وہ قائم کیا جائے. اور اس مقصد کے حصول کے لیے, یعنی اس نظام کو قائم کرنے کے لیے, اگر ضرورت پڑے تو لوہے کی قوت, جس کے اندر بڑی قوت ہے جیسے تلوار ہے یا دوسری چیزیں ہیں, ان کی ضرورت پڑے تو اس قوت کا استعمال بھی جو ہے وہ کیا جائے, اور جو ہے اس لیکن اس کام کو کیا جائے. اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عقیدے کی تبلیغ کے لیے یا پھر عبادت جو ہے وہ اس کی التزام کے لیے تشریف لائے, تو یہ بالکل واضح طور پر قرآن کے حکم کے جو خلاف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک عدل اجتماعی, سوشل جسٹس جو ہے اس سرزمین کے اوپر قائم کریں, اور انہوں نے کیا اور اس کا انہوں نے حکم بھی دیا گیا. اور یہ وہ بات ہے جس جو اس صورت میں بہت اہم جو ہے وہ بات ہے اس آیت کے اندر. پھر آخر میں رہبانیت کی سخت مذمت کی گئی ہے اور اسے بدعت قرار دیا گیا ہے, اور فرمایا کہ یہ دین کے تک, یہ بدعت اس لحاظ سے کہ یہ عیسائیوں نے اور عیسائی کے راہبوں نے اس کو ایجاد کر لیا اپنی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے اس کو نہ لکھا تھا اور نہ فرض کیا تھا, انہوں نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا, اور اس طریقے سے وہ دین کے تقاضوں سے ایک فرار کی راہ ہے جو لوگوں نے اختیار کر لی ہے. اور یہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام طریقے اسلام کے اندر بھی جن سے دین کے تقاضے پورے نہ ہوں, دین کے تقاضوں سے جو فرار ہو, غاروں کے اندر اور خانقاہوں کے اندر اور کمروں اور حجروں کے اندر بیٹھنا اور اللہ ہو کرنا, اللہ ہو کی ضربے لگانا, یہ اسلام کے تمام اسپرٹ اور روح اور اسلام کے تقاضوں کے برعکس ہے. یہ جو اس کی جو ہے اجازت نہیں ہے, اور یہی قرآن کی اس آیت کا اور اس سورت کا جو ہے مرکزی مضمون ہے. ہم اس پہ جو ہے وہ یہ پارہ بھی ختم ہوتا ہے, اور انشاءاللہ ہم اگلے پارے سے 28ویں پارے سے کل اس کے مضامین کا جائزہ لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.